ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को आज संसद में ब्यौरा देंगे। इससे पहले सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस महीने के आखिर में ऐसे 7 प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख सहभागी देशों में जाएंगे। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख नेता और विशिष्ट राजनयिक होंगे। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड्स की सराहना की है। डॉ जयशंकर ने कल हेग में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कस्पर फेल्टकंप के साथ चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। विदेश मंत्री नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय साझेदारी और संबंध मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की और वैश्विक स्थिति पर विचार विमर्श किया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने घोषणा की है कि पंजाब सीमा समेत सभी 3 संयुक्त सैन्य चौकियों पर रिट्रीट समारोह आज फिर शुरू हो रहा है। बीएसएफ के अनुसार समारोह आज मीडिया कर्मियों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। आम लोगों के लिए समारोह कल से खुलेगा। अटारी, हुसैनीवाला और सादकी के रिट्रीट समारोह को इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए निरस्त कर दिया गया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बताया है। उन्होंने भारत की ओर से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया ताकि आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में उन्होंने भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रखा। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2032 तक 900 गीगावाट बिजली उत्पादन है।
For past decade, India's electricity capacity has grown by 90%, reaching 475 gigawatt as of March 2025, and is projected to reach 900 gigawatt by 2032. This growth has been driven by a significant shift towards non-fossil fuel resources, with renewable and other clean energy consistently outpacing thermal capacity additions.
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने आज मुंबई में महायुति सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार उपस्थित थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत के बाद कहा कि पुतिन से वार्ता सकारात्मक रही और दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं।
My little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin. Actually, we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average, and we're trying to stop it. It's a bloodbath.
इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पुष्टि की है कि रूस संभावित शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन रूस के साथ तुर्की, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में शांति वार्ता करने को तैयार है। जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया है। ये सम्मान रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की वचनबद्धता के प्रति भारत के सतत प्रयासों का एक प्रमाण है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हारने के बाद प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।